श्री श्री षड गोस्वामी अष्टकम्। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो, प्रेमामृतांबोन दे। धीरजन प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सर पूजित। चैतन्य कृपा भर भुवि भुव, भरावहन्तारको।
चैतन्य कृपा भर भुवि भुव, भरावहन्तारको।
वन्दे सनातन रघुयुग, श्रीजीव गोपालको। शास्त्र विचारण निपुण, सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने, मान्यौ शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालको। सनातन रघुयुग, श्रीजीव गोपालको। गौरांग गुणानुवर्णन विदो, श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो। पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृतां गोविन्दगानामृतये। निपुण कैवल्य निस्तारको।
आनन्दाम्बुधिवर्धनै
वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को शेषमण्डलपते श्रेणीं सदा तुच्छव दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रित गोपी भावर सामृताब्धिलहरी कल्लोल मग्नो मोहो सनातन प्रभुयुग श्रीजीव गोपाल को पूजत कोकिल हंस सारस गण कीर्णे मयूरा कुले नानारत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतो जीवार्थ दयो मुदा सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपाल को पूर्वक नाम गाननतिभि कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो निद्राहार विहार कादि विजितो राधा कृष्ण गुण स्मृतिर्मधुरिमानन्देन सम्मोहितो राधा कृष्ण गुण सनातन प्रभु युग श्री जीव गोपाल को राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशी वटे मोन्मादवशादशेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वंजे कुतः शन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलो वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को
गोस्वामी अष्टकम की जय श्री षड गोस्वामी की जय गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इंग्लिश हिंदी हरे बोल हरे कृष्णा वृंदावन में हमें कैसे रहना चाहिए ये षड गोस्वामियों ने सिखलाया है अपने जीवन के उदाहरण से अपने शिक्षाओं से और श्रीला श्रीनिवास आचार्य इस सुंदर भजन में बतला रहे हैं कि उनके कार्य कैसे होते थे और उनकी जीवन शैली कैसे हुआ करती थी। विस्तार में इसके बारे में चर्चा और कभी करेंगे। हर एक पंक्ति की चर्चा, ये तो वैसे अष्टकम है, 8 श्लोक हैं इसमें, परंतु आज के लिए कहना इतना काफी है कि हमारे लिए षड गोस्वामी आदर्श हैं, विशेष करके वृंदावन के जीवन के लिए। ऐसे आदर्श को प्राय प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनका आदर्श इतना ऊंचा है और इतना महान है कि इसे प्राप्त करना हम सब साधारण जीवों के लिए प्राय असंभव है। फिर भी हमारे आदर्श होने के नाते हमें उनके पदचिन्हों में चलने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए, जहां तक हो सके, जितना हो सके हमें प्रगति करना चाहिए। वैसे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाता है, लोगों की तपस्या करने की क्षमता कम होती जाती है, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है, मानसिक शारीरिक बल कम होते जाता है, श्रद्धा उतनी सुदृढ़ नहीं होती है, बाहर वातावरण बहुत ही रजोगुणी और तमोगुणी हो जाता है और बिना विचलित हुए भगवान की सेवा करना आजकल प्राय असंभव हो गया है। और वृंदावन जैसे स्थान में भी, जहां 500 वर्ष पूर्व षड गोस्वामी रहा करते थे, वातावरण बहुत कुछ बदल गया है इन 500 वर्षों में। जब षड गोस्वामी यहां रहा करते थे तो यहां केवल वन थे, पेड़, कोई मंदिर भी नहीं थे। षड गोस्वामी ने आकर यहां पर मंदिरों की स्थापना की। तो उस समय उनकी जीवन शैली बहुत ही सरल हुआ करती थी। ऐसे मकान भी उनके पास नहीं थे, वो पेड़ के नीचे सो जाते थे। कई साल बाद मंदिर बनने लगे और फिर भी मंदिर इतने विशाल थे, लेकिन अधिकतर षड गोस्वामी इधर उधर भ्रमण किया करते थे, एक स्थान में नहीं रहते। जैसे सनातन गोस्वामी कभी यहां पर रहते तो कभी मानसी गंगा के पास, तो कभी और कहीं गोवर्धन के पास, ऐसे अनेक स्थानों में वो रहते। ब्रजवास का आदेश उन्हें चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्राप्त हुआ था। सबको ऐसे महाप्रभु ने आदेश नहीं दिया, षड गोस्वामियों को और अन्य थे जिनको महाप्रभु ने ऐसा ही आदेश दिया था, वह केवल यहां पे आके रहे। जगदानंद पंडित आदि भक्तों को उन्होंने यही कहा कि आप वृंदावन जाओ, केवल 3 दिन रहो, वहां पर सनातन गोस्वामी के संग में रहो और फिर लौट के आओ, क्योंकि वृंदावन का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। हालांकि वृंदावन में रहते हुए प्रगति बहुत तेजी से की जा सकती है, क्योंकि भक्ति के हर एक कार्य को करने से हमें 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है, कभी कभी 10,000 गुना ज्यादा भी लाभ मिलता है। फिर भी अगर यहां कोई हम अपराध कर बैठते हैं तो उसका फल भी 1000 गुना ज्यादा हमें मिल जाता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो बहुत ही सावधानी से ब्रजवास करे, अपनी साधना और सेवा अच्छी तरह से करता रहे और उसका जीवन एक तपस्या का जीवन हो। षड गोस्वामियों के जीवनी से हम प्रेरणा पाते हैं कि कैसे वहां 500 साल पहले इसी स्थान में वो रहे होंगे। आजकल हम ठंडी में इतना सब लपेट के बैठते हैं, चादर, टोपी, स्वेटर, सॉक्स और इतना कुछ हम अपने आप की सुरक्षा के लिए करते हैं। षड गोस्वामी के लिए क्या था यहाँ पर वृंदावन में, पेड़ के नीचे कौन सा हीटर था? और फिर जब गर्मी का समय आता था तो पेड़ के नीचे कौन सा एयर कंडीशनर था उनके पास? फिर भी षड गोस्वामी अपने भक्ति के कार्यों में इतने मग्न रहते कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत रहा है। हालांकि उस समय गैरवे वस्त्र वैष्णव नहीं पहना करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने गैरवे वस्त्र स्वीकार किए क्योंकि उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया था और बाहरी रूप से देखा जाए तो उन्होंने केशव भारती महाराज से संन्यास दीक्षा ली थी जो कि मायावादी भारतीय संप्रदाय के थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसे गैरवे वस्त्र धारण किए थे। परंतु षड गोस्वामी और जो अन्य गोस्वामी गण आए यहां पर ब्रज में, उन्होंने संन्यास नहीं स्वीकार किया, बाबा जी वेश में यहां रहा करते थे और सफेद वस्त्र कौपीन कंथाश्रित, केवल एक कौपिन और छोटा सा कंबल साथ में रखा करते थे। कौपिन मतलब छोटा सा कपड़ा जो कि यहां तक घुटनों तक आता है और बस उतना ही उनके पास होता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वैष्णवों को गैरवे वस्त्र पहनने की प्रथा शुरू की पुनः, क्योंकि वो साबित करना चाहते थे सारे समाज के लिए कि यहां इस कलयुग में भी प्रचार के लिए हम इस रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। क्योंकि जब लोग इस वस्त्र को देखते हैं तो मन ही मन सम्मान करते हैं, तुरंत जान लेते हैं कि यहां ये भगवान का व्यक्ति है। और जब लोग ऐसे सम्मान देते हैं इस वस्त्र को तो वो प्रगति करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ग्यारहवें वस्त्र पहनते हैं, कोई भी वैष्णव का पोशाक पहनते हो लेकिन विशेष करके गहरे वस्त्र, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन को ऐसे बिताएं, उनका रहन सहन उनकी बोलचाल ऐसे हो कि वो दूसरों के लिए भी एक आदर्श बने, अन्यों को ऐसा जीवन देखकर प्रेरणा मिलनी चाहिए, उत्साह मिलना चाहिए भक्ति के लिए। तो ये गैरवे वस्त्र का अर्थ है कि भौतिक इच्छाएं नष्ट हो रही है, ये आग है, जिस आग में हमारी सारी वासनाएं, सारी भौतिक कामनाएं जल के राख हो रही हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल गैरवे वस्त्र धारण करके तुरंत हमारी सारी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, परंतु ये एक पोशाक है जिससे हम घोषणा कर रहे हैं सारी दुनिया को कि अब मेरी भौतिक वासनाओं को नष्ट करने के लिए मैं पूरी तरह से गंभीरता से कार्यरत हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसे कोई बर्ताव नहीं करना जो कि अयोग्य हो इस वस्त्र के लिए, मेरे ऐसे जीवन के लिए। और ऐसे वस्त्र पहन के हम अपने मन को भी प्रचार कर रहे हैं कि देखो अभी तुमने गहरे वस्त्र पहन लिए हैं तो अभी सावधानी से कार्य करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि अन्यों को लगे कि अरे ये क्या है, ये किस प्रकार के ब्रह्मचारी हैं, किस प्रकार के वैष्णव हैं। तो अन्यों की श्रद्धा और भक्ति कम नहीं होनी चाहिए बल्कि बढ़नी चाहिए। तो जो वैष्णव पोशाक पहनते हैं, विशेष करके लाल कपड़े पहनते हैं, उनके ऊपर ये दायित्व रहता है कि अपने व्यवहार को, अपने साधना को, अपने सेवा भाव को वो ऐसे बनाएं ताकि लोग उंगली न उठाएं बल्कि लोग प्रशंसा करें और लोग प्रेरणा प्राप्त करें। अन्यथा कलयुग में ऐसे गहरे वस्त्र के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कलयुग तो दोषों का सागर है। कलयुग में मन बहुत सताता है, हैरान करता है जीव को। मन इस कलयुग में वासनाओं का भंडार है, मन तो हैरान करता रहेगा, परंतु अगर गहरे वस्त्र पहन के गंभीरता से, हृदय से, प्रार्थनात्मक भाव से हमने अगर भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास किया तो अवश्य भगवान की कृपा होगी और बाहर जो अनेक युद्ध हम करने जा रहे हैं माया के साथ, प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है हमारे अंदर की युद्ध, हमारी इंद्रियों पर वश करना, हमारे हृदय में इन वासनाओं को नष्ट करना, ये वासनाओं को होते हुए भी इनकी ओर ध्यान न देकर भगवान की सेवा में पूरी तरह से मग्न रहना। तो ये है गहरे वस्त्र का तात्पर्य। गहरे वस्त्र का मतलब ये नहीं है कि मैं विशुद्ध भक्त बन गया हूं और सभी को मुझे सम्मान देना चाहिए। गहरे वस्त्र का मतलब ये है कि शुद्ध भक्त बनने की चेष्टा मेरी अवश्य है और मुझे, मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं शुद्ध भक्त बनूंगा भगवान, गुरु और वैष्णवों की कृपा से। ये दृढ़ निश्चय गहरे वस्त्र का प्राण है कि हम अभी सब कुछ भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार के संदेश के आंदोलन के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। न हमें कोई स्त्री संघ की अभिलाषा है इस वस्त्र को पहन के, और न हमें कोई संसार के भोग की कामना है किसी भी प्रकार की। हमें केवल इस प्रचार के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसका विचार हमें करना है बस। और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमारे अलग अलग भूमिकाएं हो सकती हैं, अलग अलग कार्य हो सकते हैं। जैसे कि एक सेना में तरह तरह के सैनिक होते हैं जिनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार से यहां हमारी सेवाएं अलग अलग हो सकती हैं, परंतु उद्देश्य एक ही है। तो चाहे जो भी हमारी सेवा क्यों न हो, जब हम गहरे वस्त्र धारण करते हैं, हमें समझना चाहिए कि हमें और भी गंभीर होना चाहिए हमारी सेवा में, हमारी साधना में, और भी सतर्क रहना चाहिए हमारे व्यवहार में, ताकि हम कोई ऐसा व्यवहार न करें जो कि उचित नहीं है। अगर इस भावना से हम हमारे वस्त्र को जानेंगे और उसको स्वीकार करेंगे, तो हमारा गैरवा वस्त्र धारण करना यह सफल हो जाएगा। वस्त्र के कई महत्व होते हैं। पहला महत्व यह है कि हम शरीर को ढकते हैं, कपड़ों से शरीर को ढका जाता है, सर्वप्रथम यह उद्देश्य होता है। ठंडी में, गर्मी में, केवल प्रकृति के आक्रमण से नहीं, परंतु लज्जा की दृष्टि से भी, एक सभ्यता की दृष्टि से शरीर को ढकना ये मनुष्य समाज में आवश्यक रहता है। अन्यथा मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? आपने कभी बंदरों को धोती पहनते हुए नहीं देखा होगा, या धोती फाड़ते हैं लोग, केवल पहनते नहीं है ना, क्योंकि वो पहन नहीं सकते हैं। तो केवल त्याग ये ब्रह्मचारी का लक्षण नहीं है। केवल बिना वस्त्र रहना, जंगल में रहना बंदर भी करते हैं, परंतु केवल फाड़ते हैं और भोग बहुत करते हैं अवसर प्राप्त होने पर। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वो अपना शरीर ढके अच्छी तरह से, सही ढंग से। वस्त्र का दूसरा महत्व ये है कि हम अपने आप को लोगों के सामने इस रूप से प्रस्तुत करें जिससे कि वो अच्छे मार्ग में चलते रहें। ऐसे वस्त्र आजकल लोग पहनते हैं केवल दूसरों को उत्तेजित करने के लिए, दूसरों का मन विचलित करने के लिए। कपड़े पहनते हैं केवल शारीरिक आकर्षण को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। ढकने के अलावा हमारे कपड़ों के द्वारा हम एक संदेश भेजते हैं दूसरों को। तो हमारे लिए संदेश क्या होना चाहिए? हमारे वस्त्रों के माध्यम से हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाना चाहते हैं। तो लोग जब तिलक देखते हैं, लोग कंठी माला देखते हैं, लोग ये गहरे वस्त्र या धोती कुर्ता देखते हैं, हाथ में जब माला देखते हैं, तो तुरंत उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है। तो हमें ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो अन्यों को कृष्ण की याद दिलाए। इसलिए गहरे वस्त्र एक समर्पण के वस्त्र है। तो दूसरे लोग जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे देखो, ये व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित किया है भगवान कृष्ण के लिए, मुझे भी करना चाहिए। कि मैं गृहस्थ में नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरे स्थान में रहते हुए मुझे कुछ तो सेवा करनी चाहिए। तो जब ब्रह्मचारी या सन्यासी ऐसे गहरे वस्त्र पहनकर जाते हैं तो अनेक लोग उनको देखते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। साथ साथ वस्त्र के ये गुण भी होने चाहिए कि वस्त्र को स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र सरल होने चाहिए, विशेष करके जो व्यक्ति गहरे वस्त्र धारण करने जा रहा है उसे जानना चाहिए कि वो एक फैशन की दुनिया में नहीं जा रहा है, बल्कि एक सरलता की दुनिया में जा रहा है। इसलिए हमारे कपड़े सरल होने चाहिए, परंतु गंदे नहीं। कभी कभी लोग ये गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरल कपड़े मतलब गंदे कपड़े, फटे हुए कपड़े। ऐसा नहीं है। सरल रहना, स्वच्छ रहना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कपड़े फटे हुए होने चाहिए। अगर हम प्रचार के लिए जा रहे हों या किसी कार्य से जा रहे हों जहां अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो साफ सरल कपड़े पहन सकते हैं, परंतु देखना चाहिए कि दिखने में वो ठीक लगे, ताकि सामने वाला आदमी ऐसा नहीं सोचे कि अरे ये कहां से आ गए, कैसे व्यक्ति है, सब फटे हुए कपड़े हैं, ये क्या हमारा काम करेंगे, ये कैसे करेंगे। हम प्रभुपाद जी के संस्था को, महाप्रभु के आंदोलन का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये भी सोचना चाहिए। हालांकि हम कपड़ों को सरल रखेंगे, साफ रखेंगे, फिर भी अच्छे होने चाहिए, ध्यान से हमें रहना चाहिए। विशेष करके प्रचार हेतु हमें कपड़ों को ऐसे बनाए रखना चाहिए। और अगर भक्तों के लिए भी, अगर कोई दूसरे भक्त देखते हैं कि अरे ये ब्रह्मचारी कितने गंदे कपड़े पहने हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो सत्वगुण में हो, सत्वगुण में होने के नाते वो स्वच्छ होना चाहिए, उसका मन स्वच्छ होना चाहिए, उसका शरीर स्वच्छ होना चाहिए, उसके कपड़े भी स्वच्छ होने चाहिए। तो गहरे वस्त्र भी हमारे साफ सुथरे होने चाहिए। पानी से डरना नहीं चाहिए, भले वो जाड़े के मौसम में भी क्यों ना हो। कपड़ों का इस्तेमाल भी अच्छा करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गमाने चाहिए। यह भी कृष्ण की शक्ति है। आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, वैराग्य की भावना मन में रख के, युक्त वैराग्य की भावना मन में रख के हमारे जीवन को भगवान कृष्ण के आंदोलन के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। हमारे स्वयं की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनके ऊपर ध्यान न देकर, उनको त्याग कर, केवल हमारी साधना, सेवा, प्रचार आदि के कार्य में हमें लगना चाहिए। और ये भावना अगर हमारी रहेगी तो अवश्य ये गैरवा वस्त्र सार्थक हो जाएगा। वास्तव में जितने भी गलत वासनाएं हमारे हृदय में हैं, वो सब जल के राख हो जाएंगे। तो आज धर्मात्मा प्रभु अकेले ले रहे हैं ना, धर्मात्मा प्रभु अभी गैरवे वस्त्र स्वीकार करने वाले हैं। हरि बोल। तो इसी भावना से हमें ये वस्त्र स्वीकार करना चाहिए। हालांकि वैसे कोई बड़ा अनुष्ठान ऐसे अवसर पर नहीं होता है, परंतु हम लोग आज ऐसे ही मिले हैं ताकि हम अपने आप को याद दिलाएं कि इस वस्त्र या इस रंग का महत्व क्या होता है। जैसे दीक्षा के समय इतना बड़ा अनुष्ठान क्यों होता है, यज्ञ होता है, भगवान के सामने मंदिर में किया जाता है और भी इतने सारे मंत्र बोले जाते हैं, क्या आवश्यकता है? क्या गुरु सामने बिठाकर मंत्र केवल दे नहीं सकते? बस 2 मिनट की बात है, 5 मिनट की बात है, इतना बड़ा अनुष्ठान क्यों करना चाहिए? ताकि इस दीक्षा के कार्य को हम बहुत गंभीरता से स्वीकार करें। नहीं तो हम सोचेंगे हाँ बस कान में कुछ कह दिया, चलो ठीक है। लेकिन जितना बड़ा अनुष्ठान होता है, कई लोग रहते हैं, हवन वगैरह यज्ञ होता है, मंत्र बोले जाते हैं, कीर्तन होता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है हाँ ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है और ये हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो क्योंकि ये हमें इस कार्य को गंभीरता से लेने में मदद करते हैं, इसलिए हम उसको करते हैं, श्रद्धा को और सुदृढ़ बनाने के लिए मदद करते हैं। उसी प्रकार से ऐसे छोटे छोटे हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं जैसे आज का है, वैसे ऐसी कोई प्रथा है नहीं, परंतु जो भी हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है उसे हम स्वीकार करते हैं, अनुकूल्यस्य संकल्पः। तो अगर हमें ग्यारहवें वस्त्र का महत्व जानने में थोड़ा अच्छा होता, महत्वपूर्ण इसका पता चल जाता है, तो ऐसे छोटे से अनुष्ठान करने में कोई हानि नहीं बल्कि लाभ ही है। हम सब बार बार सोच सकते हैं कि हाँ, अगर हमने ग्यारहवें वस्त्र पहने हुए हैं तो हमें सोचना चाहिए, हाँ मुझे इन वस्त्रों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, कभी घमंड नहीं आना चाहिए, मेरे पास ग्यारहवें वस्त्र हैं, दूसरे के पास सफेद हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महत्वपूर्ण केवल बात हमारी केवल कपड़े नहीं है, हमारे हृदय का रंग भी लाल होना चाहिए, केवल कपड़े लाल नहीं। केवल कपड़े लाल हो हृदय सफेद हो तो नहीं, भले कपड़े सफेद हो या लाल हो लेकिन हृदय लाल होना चाहिए। लाल मतलब क्या कि भौतिक कामनाएं नष्ट होनी चाहिए। तो भी आज धर्मात्मा प्रभु ये संकल्प लेके आगे भक्ति में बढ़ने वाले हैं, है ना। जय धर्मात्मा प्रभु की जय। यस धर्मात्मा प्रभु, ये तो आइए हम सब धर्मात्मा प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो अपने ब्रह्मचार्य जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाए बनाए रखे और इस ग्यारहवें वस्त्र को बड़ी गंभीरता से ले और इस जीवन के अंत में अनेकों को साथ लेकर भगवान के धाम में चले जाए। अभी आप आपके नए अवतार में आइए। और कितने भक्त हैं जो अभी शीघ्र ही थोड़े समय में लेंगे, चार पांच भक्त हैं लेने की तैयारी में, तो समय जल्दी आएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी आएगा तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि हम साधना सेवा संग ये तीन चीजें अच्छी तरह से करते रहे बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी?
हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने प्रवचन में बताया कि जो मन के बारे में बता रहे थे, तो गैरवे वस्त्र धारण करने के बाद भी हमारे भौतिक इच्छाएं रहते हैं और मन नियंत्रण में नहीं रहता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं दूसरे भक्तों को, चाहे यही इसी मंदिर में या किसी दूसरे मंदिर में, कि गैरवे वस्त्र धारण करने के बाद वो किसी अलग तरह से आचरण करते हैं या वो गैरवे वस्त्र को बदल देते हैं, वो शायद वो आश्रम दूसरे आश्रम में चले जाते हैं। तो ये सब देख के किसी भक्तों के मन में उच्छा कम हो जाता है, तो क्या आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे हम उच्छाएं बनाए रखें?
जो दुनिया का नियम है उसको बदल तो नहीं सकते, ऐसे इतिहास में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि सारे जो ब्रह्मचारी बने वो सब ब्रह्मचारी ही रहे, नहीं तो हम आज होते नहीं यहां पर, है ना, होते कैसे? सही बात है ना। वैदिक सभ्यता में भी प्रथा क्या थी, 25 वर्ष तक युवक ब्रह्मचारी रहता, अधिकतर फिर गृहस्थ बन जाते, थोड़े बहुत ब्रह्मचारी ही रह जाते, आगे चल के संन्यास लेते, और जो गृहस्थ बनते वो आगे चल के वानप्रस्थी होकर फिर सन्यासी हो जाते थे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है अगर कोई ब्रह्मचारी आगे चल के गृहस्थ बने, तो क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, अनेक ब्रह्मचारियों में से थोड़े बहुत गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अच्छी तरह से ब्रह्मचारी आश्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है तो फिर वो अच्छी तरह से अपने गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति भाव में रह पाएंगे। अगर उनके लिए स्थान गृहस्थ आश्रम है तो उनको वो स्थान स्वीकार करना योग्य है, उचित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में टिक के रह पाता है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सरल है, इसमें समस्याएं कम है। अगर किसी को लगता है कि ब्रह्मचारी आश्रम में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और वो गृहस्थ आश्रम में स्वीकार करता है तो फिर उसे पता चलता है कि गृहस्थ आश्रम में कितने और समस्याएं हैं। समस्या तो होगी ही, जब तक ये भौतिक शरीर है और हम ये भौतिक जगत में हैं, समस्याएं तो होंगी ही होंगी। तो सबसे कम समस्याएं ब्रह्मचारी आश्रम में। जो इस वाक्य को इस बात को विश्वास नहीं करते हैं उनको गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए और अनुभव से सीखना चाहिए, है ना। लेकिन जो दूसरे के अनुभव से सीख लेता है उसके लिए जीवन थोड़ा सरल बन जाता है। तो ये हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। थोड़े बहुत ब्रह्मचारी हो भी जाए, भले वो अच्छे भी भक्त क्यों ना हो, कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन हमें जहां तक हो सके हमारे इस ब्रह्मचर्य के पथ में दृढ़ रहने का निश्चय करना चाहिए। अगर हो सके तो हमें रहना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर ठीक है, आगे चल के गृहस्थ हो सकते हैं। लेकिन जिन थोड़े बहुत वर्षों में हम रह चुके हैं यहां पर, उन वर्षों का लाभ अवश्य होगा। लेकिन इस आश्रम में रहते हुए हमें कोई गड़बड़ नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो उचित नहीं है ब्रह्मचारी आश्रम में। और कलयुग के प्रभाव से और प्रशिक्षण न होने की वजह से कई लोग इस आश्रम को स्वीकार करते हैं परंतु उनके कार्य योग्य या उचित नहीं होते हैं, तो वो अच्छा नहीं है, उससे बहुत अपप्रचार होता है, एक प्रकार की हिंसा है ये समाज के ऊपर, क्योंकि ऐसे कार्यों से लोग भक्ति मार्ग में, धर्म में और भक्तों में विश्वास खो बैठते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसे कभी कोई कार्य न करें जिससे कि हमारे आंदोलन के ऊपर कोई कलंक पड़े, ठीक है।
प्रभु जी छोटे से प्रश्न, किन किन बातों के ऊपर एक ब्रह्मचारी को सतर्क रहना चाहिए ताकि वो आश्रम में बिना बाधा हुए टिक पाए, थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए।
बिना बाधा हो ही नहीं सकता कैसे संभव है, बाधाएं तो आएंगी। भौतिक जगत में रहते हुए बाधाएं नहीं आई, क्या संभव है? नहीं है। लेकिन ये बाधाएं हमारे लिए परीक्षा है जो हमें आगे प्रगति करने में मदद करेंगे। लेकिन जो हमें नियम बताए गए हैं केवल उनका पालन हम सख्ती से करेंगे, निष्ठापूर्वक हम रहेंगे तो फिर प्रगति करते रहेंगे और ब्रह्मचारी जीवन में रह पाएंगे। ब्रह्मचारी को चाहे कि वो अपनी साधना बड़ी अच्छी तरह से बनाए रखे, बड़े हृदय से सेवा करता रहे और समय बर्बाद नहीं करे, भक्तों के संग में रह के दासों के दास के रूप में रहे, नम्रता से अहंकार को त्यागे, क्योंकि जब घमंड अहंकार आ जाता है तो काम वासना भी बढ़ती है, इससे मुक्त होना चाहिए। और व्यवहारिक दृष्टि से हमें सावधानी रखनी चाहिए कि माताजियों से संपर्क हमें नहीं करना चाहिए, और करना भी पड़े तो केवल सेवा के लिए, और वो भी कम से कम। और जितने भी सावधानी होती है इस क्षेत्र में उनका पालन हमें करना चाहिए। विधि विधानों का पालन, नियमों का पालन हम अच्छी तरह से करेंगे तो अवश्य हम माया के रोग से मुक्त रहेंगे। और कोई
हरे कृष्ण, तो जी आपने अंत में वो तीन जपनों को बताया था, साधना, सेवा और संग, कृपया हमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो आपने भी बताया मुझे इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा और बताएंगे तो समझ पाऊंगा।
साधना मतलब
कैसे,
हमारी 16 माला, हमारी पढ़ाई, मंदिर के कार्यक्रम, विशेष करके सुबह के कार्यक्रम, ये सब साधन है। फिर दूसरी बात सेवा, सेवा जो निर्धारित सेवा हमारी है वो अच्छी तरह से करना, पूरी तरह से करना, जिम्मेदारी से करना और सेवा भाव का अनुशीलन करना, ये सेवा में आता है। सेवा को कभी बोझ नहीं समझते हुए, सेवा को एक अनमोल अवसर और भगवान की कृपा समझते हुए ऐसे आभारी हृदय से स्वीकार करना, शिकायती भाव न रखते हुए अन्यों के प्रति, हमारी सेवा के प्रति, परिस्थिति के प्रति, हमारे भाग्य के प्रति, ऐसे भाव में हमें रहना चाहिए। जो ब्रह्मचारी संतुष्ट रहेगा वो टिक पाएगा, जो शिकायती भाव रखेगा उसको प्रगति करना या टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। तो कृष्ण भावना ये सेवा भाव के ऊपर निर्धारित है। सेवा भाव हमारी अच्छी रहेगी तो हम साधना भी उसी भाव से करेंगे। साधना ये भी एक सेवा ही है, परंतु जब हम सेवा यह अलग से कहते हैं तो हम प्रैक्टिकल सेवा की बात करते हैं। और इसका मतलब है कि हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ब्रह्मचारी विशेष करके कभी आलसी नहीं होना चाहिए। और संग, संग मतलब हमेशा सही संग में रहना चाहिए, असत संग को त्यागना चाहिए। असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, महाप्रभु ने कहा है ना कि वैष्णव की पहचान होती है कि वो असत संग को त्याग करता है। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर, जो स्त्री संगी है या जो स्त्री है, इन दोनों का संग नहीं करना चाहिए। और जो कृष्ण अभक्त हैं, जैसे मायावादी आदि हैं, उनका भी संग त्यागना चाहिए। तो संग का मतलब है गलत संग से दूर रहना, और सही संग जो वैष्णव हैं उनके संग को हृदय से, सेवा भाव से, नम्रता से स्वीकार करना। हरि बोल धर्मात्मा प्रभु की जय। यस धर्मात्मा प्रभु कम। हरि बोल। तो आप सब प्रार्थना कीजिए कि धर्मात्मा प्रभु बहुत ही अच्छे ब्रह्मचारी बने रहेंगे और आगे चल के अन्यों को भी प्रेरणा देंगे ब्रह्मचारी जीवन में, भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। और अब श्रीमान धर्मात्मा दास ब्रह्मचारी दो शब्द बोलेंगे। यस
सबसे पहले मैं देवामृत प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज ही बेलग्राम से तुरंत लौटे हैं और इतने अपना बिजी स्केड्यूल से मेरे लिए भी टाइम निकाल के आए हैं आश्रम में। उसके बाद गौर सुंदर प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहेंगे बहुत, जो इतने साल से मुझे इतना प्रेरणा देते आए हैं हर वक्त। मैं जिसके काबिल नहीं हूँ फिर भी इतने भक्तों की कृपा मुझ पे हैं। और सुंदर प्रभु, श्यामाजी प्रभु जी, अद्वैत आचार्य प्रभु और आश्रम के इतने अच्छे भक्तों का कृपा मेरे ऊपर है। मैं सब भक्तों के चरण कमलों में एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज ये वस्त्र धारण करने के बाद भी मेरे भौतिक जो वासनाएं हैं वो कम हो धीरे धीरे और मैं भक्ति तीव्रता से कर सकूं, और इसी वस्त्र में मैं अपनी अंतिम श्वास त्याग सकूं।
हरे बोल।
हरे कृष्णा। इसका मतलब है कि और 70-80 साल जीना है। और अच्छी तरह से सेवा करनी है। हरे कृष्णा। तो आप सब प्रार्थना कर रहे हैं ना धर्मात्मा प्रभु के लिए, तो हरि बोल कहिए अगर आप कर रहे हैं तो। हरे कृष्णा। हम प्रार्थना करेंगे श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताय और श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में कि वो भी धर्मात्मा प्रभु के ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएंगे, इस वस्त्र को जीवन के अंत तक धारण करने के लिए और शुद्ध भक्ति के मार्ग में तेजी से प्रगति करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदे गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।